माधव जी, मैं जानती हूँ कि अभी आप आंटी के लिए परेशान हैं, आपका खाने पीने का कुछ भी करने का मन नहीं है, पर आप खुद सोचिए ना कि अभी आपको ही सब संभालना है। आंटी जी के साथ साथ शिखा की जिम्मेदारी भी आप पर है। ऐसे में अगर आप ही कमज़ोर पड़ जाएंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, खाने पीने में लापरवाही दिखाकर बीमार पड़ जाएंगे, तो उन दोनों को कौन संभालेगा? इसलिए अपने लिए नहीं सही, पर अपने परिवार के लिए आपको हिम्मत बनाकर रखनी होगी, अपना ध्यान रखना होगा। माधव खाना खा रहा था और राधिका उसके पास बैठी प्यार से उसे समझा रही थी। माधव ने उसकी बातें सुनकर सर घुमाकर उसे देखा तो राधिका हल्के से मुस्कुरा दी। माधव जी, अपनी बाकी दोनों बहनों को आपने बता दिया आंटी के बारे में? अचानक मन में आया सवाल राधिका ने उससे पूछा, जिस पर उसने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, अभी नहीं बताया, बेवजह परेशान हो जाएंगे, एक बार मम्मी को होश आ जाए उसके बाद बता दूंगा। ये अच्छा फैसला किया आपने। अब आपने खाना खा लिया तो कुछ देर घर जाकर आराम कर लीजिए, मैं तब तक आंटी के पास रुक जाऊंगी। राधिका के इस सुझाव को माधव ने तुरंत ही ठुकरा दिया। नहीं राधिका, आप घर चली जाइए, आप यहाँ सारी रात जागती रही हैं, घर जाकर आराम कर लीजिए, मैं मम्मी के पास ही रहूंगा। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। राधिका ने भी उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। माधव ने तुरंत ही उससे सवाल किया, क्यों, मैं हूं तो यहाँ, फिर आप बेवजह यहाँ क्यों रुकना चाहती हैं? जब पापा हॉस्पिटल में थे तब आप भी तो सारा वक्त मेरे साथ ही रुके थे, मैं भी आपको इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और अब आप इस बात पर मुझसे कोई बहस नहीं करेंगे। शायद राधिका उसके इरादे भांप गई थी, इसलिए माधव को उसने आगे कुछ कहने भी नहीं दिया और बर्तन समेटने लगी। माधव ने भी आगे कुछ नहीं कहा और दोनों आईसीयू के बाहर आकर बैठ गए। सारी रात के जागे और इतना तनावपूर्ण माहौल, कुछ ही देर में दोनों नींद की गहराइयों में खो चुके थे। राधिका का सर माधव के कंधे पर टिका था और माधव का सर पीछे दीवार से लगा था। नींद में राधिका की हथेली माधव के जांघ पर आकर ठहरी थी, जिसे नींद में भी माधव ने यूं कस के थामा हुआ था जैसे अब उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि आसपास से गुजरते लोग, नर्स, डॉक्टर सब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ घंटे बाद आसपास होती आवाज़ों से माधव की नींद खुली। अधखुली आंखों से उसे कुछ जाने पहचाने से चेहरे अपने सामने नजर आए, दिमाग हरकत में आया और आंखों के आगे छाई नींद के बादल धीरे धीरे करके छटने लगे। उन चेहरों को पहचानते ही माधव की सारी नींद एक झटके में खुल गई और वो इस कदर चौंका कि हड़बड़ाहट में एकदम से उठकर खड़ा हो गया। उसके अचानक हटने से राधिका, जो पूरी तरह से नींद में थी, एकदम से उसका सर चेयर के पीछे के हिस्से से टकरा गया और हल्की सी सिसकी के साथ उसने अपने सर को थाम लिया। माधव का ध्यान जब उस पर गया तो वो और ज्यादा घबरा गया और तुरंत ही उसके सर को पकड़कर सहलाने लगा। सॉरी, गलती से हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया आप पर, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? अब राधिका की नींद भी उजड़ गई थी और घबराए हुए माधव को अपने सामने देखकर उसकी लबों पर सौम्य सी मुस्कान फैल गई थी। इतनी भी नहीं लगी थी मुझे जितना आप घबरा गए। सॉरी, मेरा सच में आप पर ध्यान नहीं गया था। बेचारा माधव शर्मिंदा सा हो गया था, एक तो राधिका उसके लिए यहाँ रुकी थी और उसने उसी को चोट लगवा दी थी। मैं सच में ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, और मैं नाराज भी नहीं आपसे, तो आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी गलती मेरी ही थी, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। यहाँ माधव और राधिका एकदम नॉर्मल होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। माधव उसकी चिंता कर रहा था तो राधिका मुस्कुरा रही थी। उन दोनों का ही ध्यान अभी उन लोगों पर नहीं गया था जो सामने खड़े फटी आंखों से उन्हें देख रहे थे। भैया, ये क्या हो रहा है यहाँ? एक कड़क और रूखी आवाज वहां गूंजी, जिससे दोनों का ध्यान उनकी ओर गया। राधिका सामने कुछ जाने और कुछ अनजाने चेहरों को देखकर झिझकते हुए माधव से दूर हट गई। माधव का ध्यान भी अपनी बहनों और बहनोई पर गया तो वो भी हड़बड़ाते हुए वापस सीधा होकर खड़ा हो गया। इतने में कविता ने गुस्से भरी निगाहों से राधिका को घूरते हुए अपनी तीखी जबान चलानी शुरू कर दी। ये तो वही है ना जिनका रिश्ता आया था आपके लिए पर हमने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। मैंने तो सुना था इसकी शादी हो गई है, फिर ये इस वक्त यहाँ आपके साथ क्या कर रही है, और आप दोनों इतने पास क्यों बैठे थे? तल्ख लहजे में किए ये सवाल सुनकर जहाँ राधिका असहज सी हो गई, वहीं माधव के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। कविता, दायरे में रहकर बात करो, राधिका सारी रात यहाँ रुकी थी तो आंख लग गई। उसने अभी इतना कहा ही था कि कविता नफरत भरी निगाहों से राधिका को देखते हुए धृणा से बोली, क्यों रुकी थी ये सारी रात यहाँ आपके साथ? हमें, अपनी सगी बहनों को तो आपने कुछ नहीं बताया? हमारी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, ये बात भी हमें पड़ोसियों से पता चली, पर यह अनजान लड़की जिसका आपसे और हमसे कोई रिश्ता नहीं, वो यहाँ सारी रात आपके साथ रुकी। उसे सब पता था पर हमें कुछ नहीं बताया गया। हाँ भाई, हमें कुछ क्यों बताते आप? अगर हम सब जान जाते तो आप दोनों को मम्मी के बहाने यहाँ हॉस्पिटल में प्यार की पेच लड़ाने का मौका कैसे मिलता? भाई, आप तो मर्द हैं, सालों से अकेले हैं, एक पल को मान भी लेते हैं कि बहक सकते हैं, पर ये लड़की, इसके अंदर जरा भी शर्म लिहाज नहीं। एक पराए मर्द संग सारी रात अकेली रही और अब आपके इतने पास बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई थी। कहीं यही तो आपको फंसाने की कोशिश नहीं कर रही? जरूर इसके इसी त्रिया चरित्र के कारण इसके पति ने छोड़ दिया होगा इसे, और आपको अकेला देखा तो चली आई आपको अपने जाल में फंसाने, जैसे सालों पहले फंसाने की कोशिश कर रही थी। पर ना तब हमने इसकी दाल गलने दी थी और ना आज हम इसे अपने मंसूबे में कामयाब होने देंगे। सुन रही है लड़की, दूर है हमारे भाई से, तू तब भी इनके लायक नहीं थी और आज भी नहीं है। अब बेशर्मों जैसे खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? अगर थोड़ी भी शर्म हया बाकी हो तो निकल जा यहाँ से, और दोबारा कभी लौटकर मेरे भाई की जिंदगी में आने की कोशिश भी मत करना। अगर तू मेरे भाई या परिवार के आसपास भी नजर आई तो ऐसा हाल करूंगी तेरा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगी। कविता ने आज हर हद पार कर दी थी, अपनी नफरत में अंधी जाने क्या क्या कह गई थी। माधव उसकी राधिका के बारे में ऐसी घटिया बातें सुनकर उसकी नफरत की हदें देखकर स्तब्ध था, और राधिका खुद को शर्मसार सा महसूस कर रही थी। कितना पवित्र रिश्ता था उनका, और आज उसी रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह लगा था। राधिका की दुखती रग पर हाथ रखा था और वो दर्द से तिलमिला उठी थी। उसके कभी न भरने वाले जख्मों को कुरेदा गया था और टीस आंखों में लारी बनकर बिखर गई थी। दिल में तेज दर्द सा उठा और पलकें भीग गईं। प्रहार उसके आत्मसम्मान पर हुआ था, सवाल उसके किरदार पर उठा था। एक बार फिर उसे हीनता से देखकर जलील किया गया था, पर वो अपमान के घूंट पीकर भी खामोश रह गई। कविता के पास खड़ी निशानी उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसी को झिड़क दिया। जाती क्यों नहीं तुम यहाँ से? बहरी हो या हमारे भैया को छोड़ने का जी नहीं कर रहा तुम्हारा? कविता गुस्से से राधिका पर चिल्लाई, जो सुनसी खड़ी उसे ऐसे देख रही थी मानो पूछ रही हो कि उसने क्या बिगाड़ा है उसका। इतनी नफरत, इतनी घृणा क्यों उससे? होती कौन है वो उसके पास्ट के बारे में बोलने वाली, उस पर इल्जाम लगाने वाली, उसके किरदार पर तंज कसने वाली?
राधिका की पलकें हिली, जाने क्यों पर उसने अपने समर्थन में कोई सफाई पेश नहीं की, और चुपचाप वहां से जाने को पलटी ही थी कि माधव ने उसकी कलाई थाम ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राधिका एक इंच भी ना हिल सकी। बोझिल कदमों से वो माधव की ओर पलटी, नम आंखों से उसे देखते हुए मौन विनती की, पर माधव ने उसके आग्रह को ठुकरा दिया और उसे कविता के सामने ला खड़ा किया। माफी मांगो इनसे, उसकी आवाज संयमित थी पर आंखें अग्नि सी धधक रही थीं, और लहजा इतना कठोर था कि अपने भाई के इस रूप को देखकर पल भर को कविता भी घबरा सी गई। पर झुकना कहां मंजूर था उसे, बेयकीनी से माधव को देखने लगी। आप मुझे इस लड़की से माफी मांगने कह रहे हैं? मुझे अपनी बहन को इस गैर लड़की के आगे झुकने कह रहे हैं? लड़की नाम नहीं है इनका, राधिका नाम है। उम्र और रिश्ते दोनों में तुमसे बड़ी हैं, और आज जो तुमने इनके बारे में इतनी घटिया बातें कही हैं उसके लिए एक बार तो क्या, अगर सारी जिंदगी भी तुम इनके आगे नाक रगड़कर माफी मांगोगी तब भी तुम्हारी गलतियां माफ नहीं की जा सकती। इसलिए चुपचाप राधिका से माफी मांगो। उसकी आवाज दृढ़ थी और चेहरा सख्त। कविता अब भी झुकने को तैयार नहीं थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा जिसके लिए इससे माफी मांगू। तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है। जानती ही कितना हो तुम राधिका को। किस हक से तुमने इनके पास्ट के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया? होती कौन हो तुम उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाली? क्या जानती हो तुम हमारे रिश्ते के बारे में, जो इतनी घटिया और ओछी बातें की हैं तुमने, जिनके बारे में सोचकर भी मुझे तुम्हारी सोच से घृणा हो रही है, अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी ही बहन हो। अगर अभी और इसी वक्त तुमने राधिका से माफी नहीं मांगी तो मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। माधव का चेहरा अब गुस्से से तमतमाया हुआ था। राधिका अपलक उसे ही देख रही थी। कैसे डिफेंड कर रहा था वो उसे? माधव के शब्दों ने उसके जख्मी वजूद पर प्यार, अपनेपन और विश्वास का मरहम लगा दिया था, पर ये बात कविता को बर्दाश्त ना हुई और वो भी आपे से बाहर हो गई। मैं क्यों जाऊंगी यहां से? मेरी माँ एडमिट है यहां, जाना है तो ये जाए, और आप इस गैर लड़की के लिए अपनी बहन को नीचा दिखा रहे हैं, मुझे जाने को कह रहे हैं? गैर नहीं है वो, माधव गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए चीखा। अगले ही पल राधिका ने घबराकर अपनी दूसरी हथेली से उसकी बांह पकड़ते हुए उसे रोक दिया। नहीं प्लीज, आप मेरे वजह से अपनी बहन से लड़ाई मत कीजिए, हॉस्पिटल है ये, अपनी मम्मी एडमिट है यहाँ, यहाँ लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं, मत कीजिए बहस। वो ठीक ही कह रही है, अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो वो मैं हूँ, मेरा यहाँ किसी से कोई रिश्ता नहीं, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, आप शांत हो जाइए प्लीज। राधिका उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी, विनती कर रही थी कि बात और न बढ़े। माधव रोषपूर्ण चेहरे के साथ उसे देखने लगा था। राधिका ने इनकार में सर हिलाया, आंखों से ही विनती की कि अब और जलील ना करवाए उसे। माधव की बांह छोड़ी और अपना पर्स लेकर चुपचाप वहां से जाने लगी। माधव बेबस और लाचार सा खड़ा उसे खुद से दूर जाते देखता रहा। लगा जैसे उसकी सांसें, उसकी जिंदगी एक बार फिर उससे रूठकर उसे छोड़कर जा रही थी। मन व्याकुलता से भर गया। अगले ही पल नजर सामने खड़ी कविता पर गई, जो जाती हुई राधिका को जलती निगाहों से घूर रही थी। माधव की भौहें तन गईं, चेहरा कठोर हो गया और गुस्से में उसने अपने जबड़े भींच लिए। तुम शुरू से बदतमीज थीं, मुंह भट्ट थीं, ये मैं जानता था, पर आज तुमने बदतमीजी की हर हद पार कर दी।
इतनी घटिया और गिरी हुई सोच है तुम्हारी कि मुझे ये कहते हुए भी घृणा आने लगी है कि तुम मेरी बहन हो। आज तक मैं तुम्हारी हर गलती माफ करता आया हूँ, पर आज जो तुमने किया वो माफी के काबिल ही नहीं। एक औरत होकर इतनी बेहुदा बातें कही हैं तुमने, बिना कुछ जाने ऐसे ऐसे आरोप लगाए उन पर जिनके लिए कोई माफी नहीं। सवाल कर रही थी ना तुम हमारे रिश्ते पर, किस हक से वो यहां मेरे साथ रुकी थी, यही पूछा था ना तुमने। गैर कह रही थी ना उन्हें, उन्हें जता रही थी कि वो मेरे काबिल नहीं है तो दूर रहे मुझसे। पर तुम ये सब कहने वाली होती कौन हो? किसने हक दिया तुम्हें मेरी पसंद पर सवाल उठाने का? राधिका मेरी अपनी है, उतनी ही जितनी तुम सब हो। उनका भी मुझ पर उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। वो तो हमेशा से मेरे लायक थी, पर मैं आज भी उनके काबिल नहीं बन सका। मैंने बुलाया था उन्हें यहाँ क्योंकि मुझे उनकी जरूरत थी, और वो आई क्योंकि उन्हें मेरी परवाह थी। मैं ये बात आज पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें। राधिका बहुत अहम है मेरे लिए, मैं दिल से उनकी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी माँ की, और कोई उन्हें तकलीफ पहुँचाए, उनका अपमान करे, ये बर्दाश्त नहीं मुझे। आज के बाद राधिका के बारे में एक गलत शब्द भी अगर तुम अपनी जुबान पर लाई, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, या उनके मन को अपने कड़वे शब्दों से तकलीफ पहुंचाई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो मेरी होने वाली बीवी और तुम्हारी भाभी है। किसी को पसंद आए या ना आए, पर वो मुझे पसंद है, और मैं बहुत जल्द उनसे शादी करने वाला हूँ, तो उनके साथ इज्जत और सम्मान से पेश आना। आज तुमने अपनी भाभी की जितनी इंसल्ट की है, अगली बार जब उनसे मिलो तो चुपचाप आज की अपनी हरकत के लिए माफी मांग लेना। याद रहे, अपनी भाभी से प्यार से पेश आओगी तभी भाई के घर में प्यार मिलेगा। अगर मेरी पत्नी की इज्जत नहीं करोगी तो भूल जाना अपना मायका, क्योंकि मैं उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा जो मेरी पत्नी के आत्मसम्मान को खेस पहुंचाएं, उनका अपमान करें और हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश करें। माधव ने ऐसा फैसला सुनाया कि कविता स्तब्ध रह गई। माधव का लहजा दृढ़ था, चेहरा कठोर व गंभीर और इरादे मजबूत। फैसला कर चुका था वो, और अब उसके बदलने की कोई उम्मीद नहीं थी। माधव ने अपना फैसला सुनाया और चेतावनी भरी नजरों से उसे घूरते हुए तेज कदमों से वहां से निकल गया। मन में डर था कि कहीं राधिका चली ना गई हो, और दिल बेचैन था, जबकि पीछे खड़े सभी लोग शॉक्ड से खड़े थे। टू बी कंटिन्यूड, कैसा लगा आपको आज का भाग?